ओम शांति। आज के टॉपिक है सर्वशक्ति संपन्न बनने की विधि। वैसे भट्टी का भी टॉपिक यही है ना? सर्वशक्ति संपन्न मौन भट्टी। जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा तो सर्वशक्तिमान है, हम बच्चे भी बाबा के बच्चे कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो निरंतर हम सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हैं या फिर कभी कभी करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं, ऐसा भी है ना? तो निरंतर हम सर्व शक्तियों से संपन्न रहे उसके लिए विधि क्या है? क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं होंगे तो और कौन होंगे? बाबा के बच्चे निशक्त हैं, शक्तियां नहीं हैं, तो फिर क्या कहें, है ना? तो हमारे पिता सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत शक्ति है हमारे पास, लेकिन सर्वशक्तियां नहीं है, ये फिर शोभता नहीं है, है ना? तो संगम युग ऐसा समय है, वरदानी समय, जिसमें बाबा ने हम सभी को चुना है अपना वर्षा देने के लिए, है ना? आपने चुना है बाबा को या बाबा ने चुना है आपको? हाँ? बाबा ने चुना है ना। इतने करोड़ों आत्माएं हैं इस संसार में, बाबा ने हमें चुना है अपना वर्षा देने के लिए, है ना? तो जब बाबा ने हमें चुना है तो हमारा कर्तव्य क्या है? बाबा की आशाओं को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। और समय भी वरदानी समय है, इस समय पर हम अपना झोली वरदानों से नहीं भरेंगे, शक्तियों से नहीं भरेंगे, तो कब भरेंगे, है ना? ऐसे समय पर थोड़ा मेहनत और ज्यादा प्राप्ति, है ना? ऐसा अनुभव है सभी को, भक्ति मार्ग में इतना सारा मेहनत किया लेकिन प्राप्ति अल्पकाल की प्राप्ति रहा, लेकिन अभी इस संगम युग में थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा प्राप्ति, न केवल इस जन्म के लिए लेकिन 21 जन्मों के लिए हम प्राप्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए पूरी तरह, क्यों ना हम पूरी तरह सर्वशक्तियों से संपन्न बने, है ना? तो उसके लिए विधि क्या है? बाबा ने मुरलियों में कहा है, समर्थि कब आएगा, कैसे आएगा? स्मृति सो समर्थि, स्मृति से समर्थि आएगी, है ना? तो हमारी स्मृति में क्या होगा? स्मृति माना क्या है? स्मृति माना हमारी यादें, हमारे मेमोरी में क्या है, कौन सी बातें हमें याद है, है ना? जितना हमारी स्मृति श्रेष्ठ है, ऊंच है, उतना हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। तो स्मृति को हमें पावरफुल बनाने की जरूरत है। और अक्सर करके देखा जाए, मेमोरी माना स्मृति माना पास्ट की स्मृतियां होती है ना, पास्ट जो भी बीत गई बातें, उन बातों की याद जो है वो है स्मृति। और दूसरी बात है अवेयरनेस, या फिर हम क्या है उसको जागृत स्थिति में, जागृत अवस्था में उसको अनुभव करना, वो बात है। लेकिन स्मृति की बात जब हम करते हैं तो अक्सर करके जब भी हम पास्ट की बातें याद करते हैं तो अच्छी यादें याद आएगी या फिर थोड़ा सा बहुत दुख भरी यादें याद आती हैं, ऐसे घटनाएं याद आती हैं, क्या कहेंगे? दोनों आते हैं, लेकिन ज्यादातर करके क्या आते हैं, ज्यादातर करके क्या आते हैं? नेगेटिव स्मृतियां। क्योंकि क्यों नेगेटिव स्मृतियां याद आती है? क्योंकि हमारे संस्कार में वो चीजें भरी हुई हैं। अगर अपने जीवन में देखें, आपके जीवन में अच्छी घटनाएं ज्यादा घटी हैं या बुरी घटनाएं ज्यादा घटी हैं? मेजॉरिटी अच्छा समय अच्छा बीता है या बुरा बीता है? चाहे आप 20 साल जिए हैं या 30 साल, 40 साल, 50 साल उम्र होगा या 60 साल, जितने भी उम्र है आपका, जो भी यादें हैं बचपन से लेकर के अब तक, तो जब आप शांति में बैठते हैं कौन सी बातें याद आती हैं आपको, कौन सी बातें याद आती हैं आपको? तो उसको परिवर्तन करने की जरूरत है। अच्छी यादें, इतना अपने मेमोरी में अच्छी यादें भरे, अच्छी भी है बुरे भी है, लेकिन जो भी बुरी घटनाएं घटी है, जो भी दुख भरी घटनाएं घटी है, उसको भूलने की आदत डालनी होगी। जो भी अच्छी घटनाएं हैं उसको बार बार दोहराने की जरूरत है, क्योंकि जब अच्छी अच्छी घटनाओं को दोहराएंगे तो वही फिर संस्कार बन जाता है, है ना? दादियों को भी जब हम देखते हैं, दादियां जब भी क्लासेस कराते थे तो अच्छी अच्छी स्मृतियां, अच्छी अच्छी घटनाएं, बाबा के संग के अनुभव, वो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाते थे। लेकिन क्या उनके जीवन में ऐसे अनबन या फिर थोड़ा बहुत मनमुटाव या थोड़ा बहुत ऐसे बातें नहीं हुई होगी? नहीं हुई होगी। जब वो यज्ञ में आए थे, दादियां छोटे छोटे थे, 10 साल, 12 साल, 15 साल, दुनिया को नहीं देखा था उन्होंने, यहां संगठन में आकर के ही सब कुछ सीखा है ना। तो वो आते ही देवताएं तो नहीं थे, आते ही तो दादियां नहीं थे, वो आकर के हर चीज उन्होंने सीखा, बाबा ने उनको सिखाया, है ना। तो लेकिन बाद में कौन सी यादें उनके साथ रहा, कौन सी स्मृतियां उनके साथ रही? अच्छी अच्छी स्मृतियां, है ना। जब 18 जनवरी होता था तो बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, बाबा के संग के अच्छी अच्छी यादें क्लास में बताते थे, या फिर जनवरी मास पूरा 1 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक बाबा के संग के अलग अलग अनुभव दादियां या वरिष्ठ भाई बहने सुनाते थे। और एक दिन, एक बार बाबा, अव्यक्त बाबा आए 18 जनवरी के दिन, और फिर बाबा ने मुरली सुनाया। मुरली सुनाने के बाद फिर दादियों से जब मुलाकात कर रहे थे तो बाबा ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि बाबा ने कहा कि दादी आज सवेरे से बाबा के संग के अच्छी अच्छी स्मृतियां याद करती रही है और वही बातें वो सभी को बता रही है। तो फिर मुझे लगा कि दादी के साथ भी ऐसे कुछ घटनाएं घटी होगी ना, तो वही बात लेकर के बैठ सकते थे। हम भी वही करते हैं ना, कई बार अच्छी बातें भूल जाते हैं और थोड़ा बहुत किसी ने कुछ बोल दिया होगा उसी बात को लेकर के बैठ जाते हैं। इसने ना ऐसा कहा था, उसने ना ऐसा बोला था, इसने ना ऐसा किया था। 10 अच्छी बातें होगी, 1 थोड़ा बहुत अच्छी ना होगी, 10 अच्छी बातें छोड़ देते हैं और एक जो अच्छी नहीं है उसको लेकर के बैठते हैं, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हमें अपने अंदर समर्थी को बढ़ाना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, तो हमारी स्मृतियों में अच्छी अच्छी बातें भरने की जरूरत है, अच्छी अच्छी बातों को याद करने की जरूरत है। बुरी बातें सब कुछ हम मिटा दें, मिटाना इतना सहज है, इतना सहज है। इसने ना 10 साल पहले ऐसा किया था, इसने ना 5 साल पहले ऐसा किया था, बोला था, अभी भी वो यादें हैं, उसको कैसे हम मिटा सकते हैं। जब तक हम मिटाएंगे नहीं तब तक वो याद आता रहेगा। मिटाने का तरीका है क्षमा करना। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तब तक हम उसको भूल भी नहीं सकते। इसलिए अंग्रेजी में ये दो शब्द एक साथ जाता है, ओनली व्हेन यू फॉरगिव यू कैन फॉरगेट। जब आप क्षमा करेंगे तभी आप भूल पाएंगे। इसलिए सभी बुरी बातें भूलना है तो क्षमा करना सीखना होगा। जितना हम क्षमा करके आगे बढ़ते हैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। और दूसरी बात जो समर्थि को बढ़ाना है या फिर स्मृति को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरी बात है, अनावश्यक भविष्य की जो चिंता करते हैं ना उससे आत्मा की शक्ति लीकेज होने लगता है, क्षीण होने लगता है। भविष्य की चिंता है, सबको है भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, है या नहीं है। बाबा के घर में आ गए, बाबा को समर्पित हो गए, भले घर गृहस्थ में रह रहे हैं लेकिन बुद्धि से बाबा को समर्पित हो गए तो बाबा जवाबदार है ना। हम बाबा को सब कुछ दे दिया तो बाबा जवाबदार है, बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा जवाबदार है, तो भविष्य की चिंता नहीं है, ऐसा है। क्योंकि भविष्य हमारा उज्जवल है ही। भविष्य हमारा क्या है, भविष्य हमारा क्या है, देवी देवताओं की दुनिया में भविष्य है हमारा। इस शरीर में रहते हुए तो फरिश्ता तो बनेंगे ही, है ना। भविष्य हमारा फरिश्ता है इस शरीर में होते हुए, लेकिन अगले जन्म में तो देवी देवता, ये निश्चित है, है ना। तो जब हम बार बार अपने भविष्य को देखते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा देखते थे, हमेशा वो नशा रहता था ब्रह्मा बाबा के अंदर कि मैं तो मिचनू बनने वाला हूं, अगले जन्म में अभी जाकर के मैं मिचनू बन जाऊंगा। तो ये इमर्ज रूप में, ऐसा नहीं कि ठीक है अगले जन्म में बनेंगे, नहीं अभी जाकर के बनूंगा, ऐसे उनके चित्त में उसमें भरपूर था, भरा हुआ था, विश्वास था, निश्चय था कि मैं जरूर जाकर के कृष्ण बनूंगा। तो हमारे अंदर भी वो निश्चय कि जरूर हम भविष्य में जाकर के देवी देवता बनेंगे, देवी राजधानी में हमारा जन्म होगा, हमारा जन्म कैसा होगा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी होंगे। तो ये पूरा निश्चय हो हमारे अंदर कि मेरा भविष्य ये है। तो इसीलिए दादियों को बाबा हमेशा वो फोटो निकलवाते थे, वर्तमान का फोटो और भविष्य का फोटो, उनको सजा करके पूरी तरह देवी देवताओं जैसे उनको श्रृंगार करा करके उनका फोटो निकालते थे, फिर कहते थे कि ये फोटो आपके पास रखना कि बार बार देखेंगे तो ये नशा चढ़ेगा भविष्य में जाकर के, ऐसे हम बनने वाले हैं। तो भविष्य हमेशा हम जो बनने वाले हैं उसके बारे में हम बार बार सोचते रहेंगे, बार बार वही बातें हमारे बुद्धि में आती रहेगी, तो फिर वही बातें फिर संस्कार बन जाता है। तो फिर वो संस्कार जो लक्ष्य है वैसा लक्षण, आज की मुरली में बाबा ने वही कहा है ना, जैसा लक्ष्य है वैसा लक्षण हमारे अंदर दिखाई देता है। तो इसीलिए बार बार भविष्य हमारा देवी देवताओं का हमें देखने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है और नशा चढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि नशा नहीं है तो खुशी नहीं होगा। तो इसीलिए नशा चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कभी कभी जब कोई भी मुसीबतें आती हैं, जो भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा मुसीबत जब मुश्किल आ जाता है तो लगता है कि पता नहीं यह कब खत्म होने वाला है, मायूस हो जाते हैं, थोड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर लगता है कि पता नहीं इस पर मैं विजय पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान हूं कि नहीं हूं, तो उस समय थोड़ा बहुत डाउट आने लगता है। तो उस समय क्या करें, उस समय क्या करें, ऐसा होता है ना, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई या किसी के साथ बहुत बड़ी झगड़ा बड़ा झगड़ा हो गया, कुछ ऐसे कुछ घटना घट गई या फिर ऐसा मुसीबत आ गया तो लगता है कि बाप रे अभी क्या होने वाला है पता नहीं, है ना। तो उस समय हिम्मत करके, ये बाबा ने ये भी बताया है कि ये जो परिस्थिति आई है ये रहने के लिए आया है, ये भी समय बीत जाएगा। ये आप सोच करके देखना कि इतना जैसे वो जैसे ना बबल जैसे वो पूरा ठुस हो जाता है, जो भी हमको लगता है कि पहाड़ जितना मुसीबत हमारे पास आ गया है, मेरे जिंदगी में आ गया है, हमको लगता है ये जो मुसीबत है ना हमेशा अंत समय तक ये मुसीबत रहेगा, ऐसा लगता है कि बाप रे ये पहाड़ जितना है। लेकिन एक संकल्प, कौन सा संकल्प, ये समय भी बीत जाएगा, है ना, वो मुसीबत वो कठिनाई हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। और दूसरी बात, हमारा साथी कौन है, हमारा साथी कौन है, सर्वशक्तिमान बाबा कि उनके साथ क्या है, उनके साथ क्या है, हजारों भुजाओं सहित हमारे साथ है, है ना। वो विजुलाइज करना, वो देखना, वो महसूस करना कि बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में, अभी अभी विजुलाइज करना, बैठे बैठे यहां सभी पहुंचे सूक्ष्म वतन में, सामने बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा तन में सामने खड़े हैं और हजारों भुजाओं सहित बाबा वहां खड़े हैं और बाहें पसारे बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं। जब बाबा मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है, ये हमेशा महसूस करना आप अकेले नहीं है, है ना, कोई इंसान कोई आत्मा साथ दे या ना दे, मदद करे या ना करे, लेकिन बाबा तो हमेशा दिन ना रात देखेंगे, तो हमेशा बाबा हमारे साथ जरूर है। वो हमेशा हम महसूस करें बाबा मेरे साथ है, और वो अकेले नहीं है, बाप और दादा दोनों साथ है, और हजारों भुजाओं सहित वो मेरे मदद करने के लिए हमेशा हाजिर है, ये हम महसूस करें। और तीसरी बात ये है, जब भी ऐसे कठिनाइयां आई ना, किसी के साथ भी कुछ ऐसे अनबन हो गया या कुछ ऐसा दुर्घटना घटी या कुछ ऐसा हो गया, तो वो रिवर्स विजुलाइजेशन, आजकल साइकोलॉजी में ये बात उठती है अक्सर करके, ये बातें बताते हैं, रिवर्स विजुलाइजेशन कहते हैं इसको। रिवर्स विजुलाइजेशन में क्या कहते हैं, करते हैं, अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया, रिवर्स विजुलाइजेशन में क्या है, आप ये विजुलाइज करना उसके साथ आप बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हो, बहुत प्यार से बात कर रहे हो, दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आपका संबंध बहुत अच्छा है। तो ऐसे जब विजुलाइज करते हैं, जब आप ऐसे सोचते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जो संबंध है उस व्यक्ति के साथ, उस आत्मा के साथ बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ भी घटना ऐसे होती है तो उसका पॉजिटिव, अगर जो दुर्घटना घटी है कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है, उसका पॉजिटिव आप विजुलाइज करना, क्या हुआ, मतलब उस रीति से आप विजुलाइज करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो वो उसमें ताकत बढ़ती जाएगी, ऐसे घटनाओं को हम आकर्षित करते जाएंगे। और ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे सब समस्याएं वो धीरे 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 आपका ठीक होता हुआ नजर आता है। बाबा कहते हैं ना, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, बाबा ने आपको शक्ति दी है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है हमें उसको सीखने की जरूरत है। अगर कोई मुसीबत आया तो क्या क्या करते हैं हम अक्सर करके, बाबा के कमरे में जाते हैं कि बाबा को सब कुछ बताते, बाबा ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ऐसा बोला ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, सारा नेगेटिव, सारा कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे के वाइब्रेशंस बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। और बाबा के सामने जब बैठ करके आप नेगेटिव बोल सोच रहे हैं, सारा कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं बाबा को, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बैठ करके पॉजिटिव सोचेंगे बाबा के कमरे में, वो पॉजिटिव भी मल्टीप्लाई हो जाता है। पर अक्सर करके ये भाई बहनों का कंप्लेन रहता है, मैं इतना योग लगाती हूँ, योग करती हूँ बाबा के कमरे में, घंटों घंटों बैठ करके मैं योग करती हूँ, फिर भी मेरे 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 जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। क्यों मुसीबतें हैं? क्योंकि बाबा के कमरे में बैठ करके हम केवल कंप्लेन बता रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं। जब नेगेटिव सोच रहे हैं वो तो मल्टीप्लाई होगा ही वहां बाबा के कमरे में, क्योंकि वाइब्रेशन इतना पावरफुल है, वहां शक्तिशाली है। तो इसीलिए जो हम सोचते हैं उस पर हमें अटेंशन देने की जरूरत है। जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो हम सोचेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, एक कदम रखो तो हजार कदम की मदद बाबा हमें देते हैं। अच्छा कदम रखेंगे, पॉजिटिव संकल्प करेंगे, वो भी हजार कदम मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी हजार गुना वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो इसीलिए इस बात का अटेंशन हमें जरूर रखने की जरूरत है। कभी भी आप किसी के बारे में सोचे या कोई भी समस्या के बारे में सोचे, समस्या को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, समाधान के बारे में सोचें। हर समस्या का समाधान है या नहीं है? 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 हर समस्या का समाधान है. और समाधान किसके पास है? समाधान किसके पास है? हमारे खुद के पास है, है ना? आपके जिंदगी के समस्या का समाधान किसके पास है? हमारे पास ही है. केवल हमें बाबा के साथ बैठने की जरूरत है, केवल मन और बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है. बाबा मदद कर लेंगे, क्योंकि अगर किसी के पास भी जाकर के पूछे ना कि मेरे जिंदगी में ये समस्या चल रही है, इसका समाधान क्या है, वो आत्मा अपने ही बुद्धि के आधार से वो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन संपूर्णतः वो आत्मा हमारे समस्या को शायद समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन बाबा तो समझेंगे ना. बाबा पूरी तरह मैं जो हूं जैसी हूं केवल बाबा समझ सकते हैं, है ना. अगर दूसरों के पास जाकर के बताएं कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, शायद वो व्यक्ति सोच सकता है कि इतने पुरानी है ज्ञान में फिर भी ऐसा है, फिर भी ये रोना आ रहा है, फिर भी ऐसे आत्मा है, फिर भी ऐसा हो रहा है. वो शायद जज भी कर सकता है, शायद वो आत्मा कुछ नेगेटिव भी सोच सकती है हमारे बारे में, है ना. तो भले इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के बड़ों से ना पूछे, भले पूछे, लेकिन जितना बाबा पर निर्भर होंगे, बाबा पर डिपेंड होंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है. क्योंकि बाबा जिस रीति से मुझे समझते हैं, कोई और समझ नहीं सकते हैं. तो इसीलिए जब भी आप कुछ सोचते हैं, पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव जरूर सोचें. और तीसरी बात, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है, हम किसका सुन रहे हैं और किसको देख रहे हैं. बाबा हमेशा ये कहते हैं, बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो. शिव बाबा को देखो, शिव बाबा की स्थिति, शिव बाबा जैसे स्थिति हमारा बन जाए. ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, ताकि फिर हम जिंदगी में कर्म करना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए हम कर्म करें, है ना. लेकिन उसके साथ साथ कई बार हम क्या देखना शुरू करते हैं, क्या देखना शुरू करते हैं? आसपास की जो आत्माएं हैं, भाई बहने हैं, टीचर्स हैं या पुराने हैं, जो भी है, आसपास के जो भी भाई बहने हैं उनको देखना शुरू करते हैं, और उनकी जो नेगेटिविटी है उनको देख करके फिर थोड़ा मायूस हो जाते हैं. लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बाबा को देखो और बाबा को फॉलो करो, है ना. तो इसीलिए हमेशा बाबा को देखें और बाबा को फॉलो करें. और कई बार आजकल ट्रेंड क्या हो गया है, कोरोना के कारण से बहुत सारे यूट्यूब में इसमें ऑनलाइन क्लासेस आ रहे हैं, तो कहते हैं कि फलाने भाई का क्लास बहुत अच्छा है, फलानी बहन का बहुत क्लास अच्छा है. बाबा के मुरली है ना, इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन क्लास जरूर सुनेंगे, लेकिन बाबा का मुरली समझ में नहीं आता है, इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे, हा? मुरली सुनना है या भाई बहनों की क्लासेस सुननी है, हा? मुरली का महत्व को समझने की जरूरत है. जो भाई बहने क्लासेस करा रहे हैं वो भी किसके आधार से कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा का ज्ञान ही सुना रहे हैं, मुरली के आधार से ही ज्ञान सुना है. थोड़ा बहुत क्लारीफाई कर रहे हैं, अपना मनन चिंतन बता रहे हैं, ठीक है, सुनना जरूरी है, ठीक है, सुन लेंगे, सुने, ठीक है, लेकिन उन्हीं का सुने, दूसरों का किसी का ना सुने, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अटैचमेंट या फिर भक्त आत्माओं का संस्कार है ये, है ना. फलाने आत्मा का क्लास बहुत अच्छा है, दूसरों का सुनना नहीं है. हाँ, जो भाई बहनों का क्लास है सभी से कुछ ना कुछ प्रेरणाएं जरूर मिलेगी। भाई बहनों के क्लासेस से क्या मिलता है? प्रेरणाएं मिलती है। और मुरली से क्या मिलता है? मुरली से क्या मिलता है? शक्ति मिलती है। और केवल मुरली से हम पावन बन सकते हैं। बाबा के ज्ञान से ही आत्मा को शक्ति मिलती है, समर्थि मिलती है। भाई बहनों के क्लासेस से क्या मिलता है? प्रेरणाएं मिलती है, इंस्पिरेशंस मिलते हैं, है ना। तो इसलिए ये जब डिफरेंस हमको समझ में जब आता है तो फिर हमें पता चलता है कि मुरली का महत्व क्या है, है ना। और मुरली किसका है? मुरली किसका है? स्वयं ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिमान शिव बाबा की मुरली है। और उनके अंदर सर्व गुण है, सर्व शक्तियां हैं, उनके उसके आधार से वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। और भाई बहने, भाई बहनों के अंदर सर्व शक्तियां तो नहीं है, उस लेवल के नहीं है, ठीक है कुछ है, लेकिन शिव बाबा के लेवल में, बाप दादा के लेवल का तो वो है ही नहीं ना। तो इसलिए वो जब हम अंतर समझते हैं तो मुरली का आनंद जितना हम लेते जाएंगे उतना आत्मा के अंदर बल भरता जाएगा। तो इसीलिए गोप गोपिया बनना है तो मुरली का आनंद लेना सीखना होगा ना, चाहे वो साकार मुरली है चाहे वो अव्यक्त मुरली है। साकार मुरलियों की खूबी अपनी है, अव्यक्त मुरलियों की खूबी अपनी है। साकार मुरलियां सुन के ही मम्मा बाबा नंबर वन बने, है कि नहीं? उनके सामने अव्यक्त मुरलियां नहीं थी, साकार मुरलियां सुन के ही मम्मा और बाबा नंबर वन बने। हमारे पास फिर भी अव्यक्त मुरलियां हैं, वैरायटी है और गहनता से भरा हुआ ज्ञान है ना, गहराई से, गहराई का ज्ञान है हमारे पास। उन्हीं को पढ़े, उन्हीं को सुने, उन्हीं का मनन चिंतन जितना हम करते जाएंगे आप देखेंगे आत्मा कितनी जल्दी शक्तिशाली और समर्थ बनती जाएगी, है ना। और चौथी बात है, अगर समर्थि भरना है आत्मा के अंदर, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। जितने बार हम बाबा की मुरली के पॉइंट्स या फिर स्वमान को जितने बार हम रिपीट करते हैं उसमें ताकत भरती जाएगी। ऐसा नहीं कि हजार बातें हम करें, लेकिन हम बाबा कहते हैं एक ही बात हजार बार करें उसमें शक्ति है। अगर हजार चीजें अलग अलग हम करते हैं कोई सी में चीज में भी समर्थि नहीं होगा, लेकिन एक ही चीज, एक ही सामान लेकर के हजार बार उसका अनुभव करते हैं उसमें शक्ति है, है ना। संस्कार बनाना है, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है तो श्रेष्ठ विचारों को और श्रेष्ठ कर्मों को बार 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 रिपीट करने की जरूरत है, और हर रोज करने की जरूरत है। जब बार बार हम रिपीट करते हैं तब वो संस्कार बनता है। एक बार सुन लिया, हाँ ठीक है ये मुरली बहुत अच्छा है, लेकिन फिर संस्कार तो नहीं बना ना। प्रकाशमणि दादी हर रोज मुरली 5 बार पढ़ते थे, रात को सोने से पहले, अगले दिन की सुबह जो मुरली पढ़ना है रात को सोने से पहले वो पढ़ते थे, फिर अमृत वेले के बाद पुनः पढ़ते थे दूसरी बार, और मुरली क्लास में 3री बार पढ़ते थे, और फिर जब भी बीच में अगर बाद में टाइम मिलता है और शाम को चाय लेते समय फिर 4 बजे या 4:30 बजे फिर से पढ़ते थे। लगभग 4 या 5 बार हर रोज वही साकार मुरली। हम सोचते हैं साकार मुरली में क्या है, है ना, लगता है साकार मुरली में क्या है, लेकिन एक एक चीज, एक एक बात अगर बार बार हम पढ़ते हैं वो हमारी स्मृति में बैठ जाती है और फिर वो संस्कार बन जाता है ना। तो जितने बार हम रिपीट करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, संस्कार बनाने के लिए बहुत मदद मिलता है। इसलिए भक्ति मार्ग में मंत्र जाप करते रहे लोग, है ना, 108 बार, 1008 बार वो लोग मंत्र जाप करते थे या फिर लिखते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हाँ, प्रैक्टिकली उसको अनुभव करेंगे। भले आप लिखें, 108 बार भी आप लिख सकते हैं एक स्वमान को लेकर के, लेकिन केवल लिखना नहीं है, लिखते हुए उसका अनुभव करना है। अगर मान लीजिए मैं लिख रही हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, केवल लिखना नहीं है लेकिन उस स्मृति में स्थित होकर के जब हम लिखते हैं तो वही फिर बार 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 हम जब रिपीट करते हैं वो संस्कार बन जाता है। कितना भी कठोर पत्थर क्यों ना है, उसके ऊपर बूंद बूंद पानी लगातार टपक रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, वहां छेद पड़ जाता है ना। संस्कार कितना भी कड़ा क्यों ना हो, कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, उसको परिवर्तन करने का एकमात्र उपाय है रिपीटेशन। जितने बार हम रिपीट करते जाएंगे उतना अच्छा है। तो इसलिए बाबा क्यों कहते हैं, रोज मुरली सुनो, रोज योग करो, रोज बाबा को याद करो। क्यों कर कहते हैं, बार 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 जब वो कर्म जब हम करते हैं अब अपना हमारा संस्कार बन जाता है। ना केवल हमारा संस्कार बनता है लेकिन वो वाइब्रेशन भी चारों तरफ फैलता है और संसार परिवर्तन करने के लिए भी हम निमित्त बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए बार 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 रिपीट करने की जरूरत है। जब हम रिपीट करते हैं तो नकारात्मक जो स्मृतियां हैं वो वॉश आउट हो जाता है, वो पूरा डिलीट हो जाता है, फिर अच्छी स्मृतियां, अच्छी बातें, अच्छी शक्तिशाली स्मृतियां हमारे यादों में भरता रहेगा। और लास्ट बात है, पांचवी बात ये है कि एक है स्मृति से समर्ति और दूसरी बात है स्नेह से समर्ति। जितना हमारा प्यार बाबा के प्रति बढ़ता जाएगा वह हम आत्मा समर्थ बनती जाएगी। क्योंकि केवल ज्ञान 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 ही हम मनन चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वहां ड्राइनेस रहेगा, सूखापन रहेगा, रूखा सूखा, है ना। तो इसलिए जब भावनाएं हैं, संबंध है, प्यार है, वहां जितने भी लंबा समय आपको योग करने बैठना हो तो आप बैठ सकते हैं। केवल आप ज्ञान के आधार से, मनन चिंतन के आधार से आप बैठो, सोचो क्या योग करने बैठे लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं। अगर प्यार में डूब जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो फिर लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं। तो इसलिए जितना हमारा संबंध बाबा के साथ गहरा है, इतना नजदीक है, उतना समर्थी है। और पिता और संतान का जो संबंध है वो शक्तिशाली संबंध है। जब संतान को शक्ति की महसूसता करनी है तो सोचेंगे ना, मेरा पिता कौन है, वो पता है कि मेरा बाप कौन है, कहेंगे ना, तो वो हम महसूस करते तो हाँ मेरा बाप कौन है पता है, है ना। तो मेरा बाप, आपका बाप कौन है, आपका बाप कौन है, है ना। शिव बाबा सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, सर्व गुणों का भंडार, बहुत बड़े बड़े टाइटल हैं, उसको टाइटल के सहित याद करना। जब बाबा को याद करते हैं ना, बाबा हमेशा कहते हैं मुरलियों में, गुणों के आधार से और कर्तव्यों के आधार से बाबा को याद करने की जरूरत है। केवल हम सोचे ना कि हाँ शिव बाबा है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है, तो उसमें मजा नहीं है। वही गुण और कर्तव्यों के आधार से याद करते हैं तो बाबा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है, अंधों की लाठी है, ऐसे टाइटल्स को याद करते हुए बाबा को याद करते हैं ना, उसमें नशा चढ़ता है ना। हमेशा जब भी आप योग में बैठो तो गुण और कर्तव्यों के आधार से बाबा को याद करना और अपने प्यार को गहरा करना बाबा के साथ। संबंध को जितना हम मजबूत करते जाएंगे उतना हम आत्मा के अंदर समर्थी बढ़ती जाएगी, है ना।